نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. पारा टेंथ है उसका रिकैप कर लेते हैं और उसके बाद फिर आज का हमारा बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, बहुत ही प्यारा पारा है, उसके मुताबिक चलेंगे. नाम क्या है पारे का, बोलिए सब मिलकर. वालमु. वालमु किसको कहते हैं? इल्म हासिल करो. इल्म हासिल करना क्या है कि एक इंसान अपने बारे में इस चीज़ का यकीन कर ले कि मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम और कीमती काम क्या होगा कि मैं इल्म हासिल करूँगी. ठीक है, फिर इसमें आप देखिए कि इस पारे को हमने दीनों दुनिया की रोशनी में देखा था. इससे पीछे वाला जो पारा था उसमें चूँकि तकब्बुर का मौजू था और तकब्बुर से ही आगे फिर कह लीजिए कि बतर शुरू होता है. फिर पारे के शुरू में हमने आयत पढ़ी थी, वक़ाल अलमल्लज़ी नस्तकबरू मिन कौमी ही, तो कौम फ़िरौन का जो जुमला था उससे ये पारे का आगाज़ होता है. फिर इसी तरह से हमने पारा नंबर 9 में जो चीज़ देखी थी, ईमान के साथ तकवा हो जाए तो अल्लाह ताला आसमान से बरकतें उतार देते हैं. फिर इसी तरह हमने देखा था कि जो मूसा का मुकाबले में जादूगर आए थे उनके दिल में तासुब नहीं था, तो वो दिल से कबूल कर गए और जूं ही उनको बात समझ आई बोल के यह सहरत साजिदीन सजदों में गिर गए. और फिर इसी तरह हमने अल्लाह सुबहान तआला की एक सुन्नत सूरत अलआराफ आयत 94 में देखी थी, इल्ला अखसना अहलुहा बिल बासाई व दर्राई लअल्लहुम यद्दर्रऊन, कि जब हमने उनको पकड़ा तकलीफ़ों और परेशानियों से तो मकसद क्या था, ताकि वो आजजी करें, झुक जाएं. तो कभी ज़िंदगी में आपके मेरे ऊपर कोई तकलीफ़ या परेशानी आए तो फौरन समझ जाइए कि अल्लाह आपको मुझे तोड़ना चाहते हैं, झुकाना चाहते हैं. फिर पिछले पारे में खुजू मातैनकुम बिकुव्वा वस्कुरू था कि कुरान को कुव्वत से पकड़ लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें इससे बेहतरीन फ़ायदे देगा. फिर इसी तरह वस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू, कौम मूसा को हज़रत मूसा ने ये नसीहत की थी कि जब हुक्मरानों की तरफ से जुल्म ज़्यादती ज़्यादा आने लगे तो उस वक़्त फिर इंसान सब्र करे और अल्लाह से मदद तलब करे. फिर इसी तरह काल इन्नकुम कौमु तजहलून, हज़रत मूसा का गुस्सा भरा जुमला है जो उन्होंने अपनी कौम के शिर्क को देखकर बोला था कि तुम्हें अल्लाह ने एक ऐसे फिरौन से निजात दी कि जो तुम्हारे ऊपर जुल्म करता था और अब तुम उसको छोड़कर दूसरी तरफ आ गए हो. फिर इसके बाद देखिए, हमने इसमें पढ़ा था वालमु अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, माल और औलाद फितना है, हाँ लेकिन अल्लाह के पास अजर अजीम है. ये आयत हमने सूरह अनफाल 28 में देखी थी. फिर इसी तरह जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो, व इज़ा कुरी अल कुरान फस्तमीउ लहू वंसितु लअल्लकुम तुरहमून, तो आपका मेरा भी यही काम होना चाहिए कि जब हमारे इर्द गिर्द कुरान पाक की आवाज़ आ जाए तो फिर हमारी आवाज़ें दब जाएँ. और इसी तरह से इन वली अल्लाह लसी नज़ल अल किताब व हुवा यतवल्लस सालिहीन, अल्लाह ही वली है उन लोगों का और जिसने नाजिल की किताब और वो नेक लोगों का वली है, तो क्या पता चला कि अल्लाह की दोस्ती लेनी है. फिर इस पारे की जो दुआ थी आप पढ़ लें मेरे साथ ही, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस्समाई वहुवस्समीउल अलीम. फिर इसके बाद आप देखिए कि जो हमने दिखावा देखा, बेसिकली इसको हम ज़रा सा हल्का हल्का देखना चाहते हैं, तो दिखावे की बातें पूरे पारे में से हमने देखी थी. कैसे अल्लाह की मदद बंदे पे आती है, पहली चीज़ जो अंदर होती है इंसान के यानी ईमान है, और दूसरी चीज़ क्या है कि साबित कदमी हो. फिर इसी तरह से कि क्या करेंगे कि अल्लाह की मदद आ जाएगी, तो नंबर एक अल्लाह का ज़िक्र उज़्कुरुल्लाह, और चौथी बात है हर चीज़ में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत, यानी दिल की खुशी के साथ अल्लाह की रसूल की बात को मानना. आज मुसलमानों के लिए गौर करने की बात क्या है कि उम्मत को एक वहदत में पिरो दें. आज मेरा आपका जो काम होना चाहिए, एक हो जाएं, इज्तमाईयत के अंदर इस तरह से अपने आप को डाल दें कि आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती आ जाए. आयत 47 जो हमारी मेन बतर की आयत थी, अबू जहल के लश्कर की तरफ उसमें इशारा था कि दिखावे के लिए घरों से मत निकलो, क्योंकि वो तो अपनी शान दिखाता हुआ निकला था ना मैदान जंग में. आज हम शादियों में और बारातों और मंगनियों और इस तरह के मौक़ों पे अपना खूब एक्सपोजर करके दिखाते हैं ताकि लोगों को इस चीज़ में लेकर चले. बतर क्या है? दिखावा. दिखावा क्या है? रियाकारी. ज़्यादा से ज़्यादा साजो सामान जमा करने की बेलगाम ख्वाहिश है बतर. ज़िंदगी का मकसद सिर्फ दौलत कमाना रह जाता है. अपनी हैसियत से बढ़कर ज़िंदगी गुजारने का मर्ज़ बतर है. जुमले याद है? चादर देखो پھر پاؤں پھیلاؤ تاکہ تمہیں ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں کسی کے سامنے۔ پھر ہم نے تین چیزوں کو دیکھا تھا، آرائش، زبائش اور نمائش۔ اور آرائش بھی جائز ہے، زبائش بھی جائز ہے، نمائش جائز نہیں۔ نمائش کا ہی دوسرا نام بتر ہے، جب حد سے بڑھ جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو لباس اس لیے پہنے کہ اپنے آپ کو دوسروں کی نظر میں بڑا کرے، تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا قبلہ درست ہونا چاہیے پہننے اوڑھنے کا۔ پھر اسی طرح سورۃ انفال کی آیت 59-60 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک بتر جائز ہے، اور وہ اسلحے کا بتر ہے۔ دشمن پر روب جمانے کے لیے ایسی چال چلنا، ایسا حال حلیہ اختیار کرنا، آج بھی آپ اس کو دیکھیں کس طرح ہم اپلیکیبل کر سکتے ہیں۔ جیسے اسلام کے نام پر جب بھی کوئی کام کریں، مثلا قرآن کی کلاس ہے، آپ اس میں ہر مین کو یوز کریں۔ بس اس وقت ہم سلائڈ دیکھ رہے ہیں، کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں، ہمارے گھر کی اسکرین یوز ہو رہی ہے، مائک سسٹم یوز ہو رہا ہے۔ اب کوئی ایسا بندہ جو بیچارہ ہمیشہ کسی ایسی جگہ پڑھ کے بیٹھا جہاں صرف بس بولنے والا ہے اور دوسرا، تو اس کو ایک دم مروبیت ہوگی نا، اچھا ایسے بھی پڑھتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جتنا زیادہ آپ اور میں دین کے کام کو پروٹوکول کے ساتھ پوری خوبصورتی کے ساتھ کر سکیں، روم بھی ایسا خوبصورت سیٹ ہوا ہو کہ لوگ آئیں اور دیکھیں انہیں کہ اچھا لوگ اس طرح بھی بیٹھتے ہیں، تو یونیورسٹی کا ماحول لگ رہا ہے، ہر آواز بھی بہترین ہے۔ اس وقت بھی اگر آپ ہل رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، اپنی جگہ سے ایڈمن بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، توجہ بڑھ جاتی ہے۔ تو نمائش صرف ایک جگہ جائز ہے کہ جہاں دین کی عزت ہو۔ ہم دین کی عزت نہیں، اپنی عزت کے لیے کتنی نمائشیں کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سورۃ توبہ کا جو شروع کا حصہ دیکھا تھا پارے کے اینڈ پہ، تو اللہ کے نبی کی زندگی کے آخری دور کی صورتوں میں سے، اللہ کے نبی نے اس سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھوائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی قرآن میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح سورۃ توبہ کے اندر جو آیتیں ہم نے دیکھی تھیں، تو اس میں آیت 23-24 میں اللہ نے سب کے کمزور پہلوؤں کو اس ایک آیت میں جمع کیا۔ کیا چیزیں ہوتی ہیں جو مسلمانوں کو کمزور کر دیتی ہیں؟ 26-25 میں جنگ حنین کا ذکر تھا، اور آیت نمبر 36 میں مشرکین کی بدعت کا تذکرہ تھا، اور آیت 38 سے سورت کے آخر تک پھر غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے، جو ہمارے آج کے پارے میں آئے گا۔ بہت ہی خوبصورت پارہ ہے پارہ نمبر 11، جس میں ہم انشاءاللہ ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ آیت 40 میں ان تین راتوں کا ذکر ہے جب ابو بکر نے اللہ کے نبی کے ساتھ غار ثور میں گزاری۔ پھر اس پارے میں کچھ منافقین کا تذکرہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ کھینچتے ہیں، اور آیت 86 سے اگلی چند آیات میں دو گروہوں کا تذکرہ ہے، ایک وہ جو اسباب کے باوجود جہاد میں شامل نہ ہوئے، ٹھیک ہے، اور دوسرے وہ جو اسباب کے نہ ہونے پر خواہش کے باوجود شامل نہ ہو سکے۔ فرق ہوتا ہے نا، سواریاں نہیں تھیں اور وہ بیچارے نہیں جا سکے، اور کچھ جو تھے وہ کام نیکی کا کر سکتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کوئی نیکی کا کام کر سکیں اور نہ کریں، تو اللہ کی طرف سے بڑی سخت پکڑ آتی ہے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ اس برے انجام سے، بری گھڑی سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں اس بارے میں سے یاد رکھنے کی باتیں، جیمز، یہ نوٹ کریں گے آپ خود بھی اپنے پاس۔ کبر کیا ہے؟ عدم تحفظ کا نام، یعنی جو کبر کا شکار ہوتا ہے نا، وہ اصل میں اندر سے بڑا انسیکیور ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسا بندہ احساس کمتری کا چونکہ شکار ہو چکا ہوتا ہے، تو نقصان اس کا وہی ہوتا ہے جو کہ عام طور پہ ایسے وقتوں میں ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات، جتنا ایمان اتنا انسان کا وزن ہے۔ آپ کا میرا جسمانی وزن تو گوشت اور ہڈیوں کا ہے نا، چربی کا ہوگا، لیکن جو ایمان ہے نا، وہ آپ کی بات میں روب ڈالتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں بات کرتا ہوں تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، میں نے اتنا کہا کس نے مانا ہی نہیں، میرے اپنے بچے نہیں مانتے۔ آج آپ دیکھیے لوگ کہتے ہیں بچے نہیں مانتے، دوسرے کا مانیں گے، کوئی کہتا ہے ہماری ماسیاں نہیں مانتی، کوئی کچھ کہتا ہے، تو اس کا جواب آپ کے میرے سامنے ادھر موجود ہے، اپنا ایمان پیدا کریں۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ایک درخت تھا، تو اس کے اوپر ایک بلبل بیٹھی، تو اس بلبل کی چونچ میں کنکر تھا، اس نے کنکر پھینکا تو نیچے جو پانی تھا اس میں ببلز آ گئے۔ یہ دیکھ کر درخت کو بڑا شوق آیا اور ارتعاش اٹھا، شور ہوا، ہلکی سی موومنٹ ہوئی، اس نے کہا اچھا میں بھی پھینکتا ہوں۔ اس نے ایک سوکھا ہوا پتا اٹھا کر جو ہے نا نیچے پھینکا، تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو جو بلبل تھی وہ بولی، ایک کہاوت ہی ہے نا بات سمجھنے کے لیے، کہنے لگی کہ دنیا میں ہلچل مچانی ہے نا تو اپنے اندر وزن پیدا کرو۔ وہ پتھر کا وزن تھا، اس نے اپنے ارد گرد کچھ تو شور مچایا نا، اور جو پتا تھا بیچارہ وہ گرا بھی تو کچھ بھی نہ ہوا۔ اپنی ذات کو پختہ کرے، یہ کورس آپ کی میری پرسنالٹی کو گروم کرنے والا ہے۔ زندگی قیمتی چیز ہے، ورنہ لوگ آپ کو بدھو بنائیں گے اور آپ بیوقوف بن کر ساری زندگی گزار جائیں گے، اور بعد میں آپ روئیں گے کہ میں نے اپنی زندگی سے وہ کچھ نہیں لیا جو کہ لینا تھا۔ अगला पॉइंट नोट करिए, अल्लाह की राह में जो देंगे वो बढ़ा के वापस करेगा। कोई आपको दे तो आप उसका रख लेते हैं, तो अल्लाह भी नहीं रखेगा। फिर सूरत तौबा के बारे में ये बात याद रखिए कि चूँकि इससे पहले बिस्मिल्लाह नहीं है तो हमने भी नहीं पढ़नी कभी भी, और वजह यह है कि अल्लाह के नबी ने जो कह दिया उसको मानना है। अगला जम क्या है पारे का, कि इस्लाम का मिजाज क्या है कि गुनाहगार को भी मोहलत दो। हम झटपट अगले को दीन पे लाकर बहुत ज़्यादा नेक बनाना चाहते हैं, ये होगा नहीं कभी भी, ये अननेचुरल बात है। बच्चा भी तो देखे रातों रात बड़ा नहीं होता ना, दरख्त भी एकदम बीज से दरख्त तो नहीं बन जाता। तो हमेशा अपने लिए इसकी कोशिश कीजिए कि अपने आप को बेहतर रखिए। फिर अगली बात, अल्लाह का कलाम दिलों की दवा है। हत्ता यस्म कलाम अल्लाह का लफ्ज़ था कि उन लोगों को भी जिनसे माहदे तोड़े जा रहे हैं फिर भी 4 माह की मोहलत दी जा रही है कि शायद कुरान सुनेंगे तो इनके दिल बदल जाएंगे। फिर इसी तरह मस्जिदों को सिर्फ बनाना ही नहीं आबाद भी करना है। आज हम कितने शौक़ से मस्जिद बनाते हैं और बनवाते हैं लेकिन मस्जिद में नमाज के लिए नहीं जाते, तो ये बहुत बड़ी एक बात है इस बात को समझने में। फिर उसके बाद अगला क्या है कि अल्लाह की मदद के बगैर बड़े बड़े असबाब भी बेकार हो जाते हैं। इस वक्त हम सब अगर कुरान से कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं तो ये अल्लाह की मदद से। हमने कोशिश की, चीज़ों को सेट किया, माइक लगाया, सब कुछ किया, अब मदद अल्लाह की है कि ये क्लास स्मूथली चल रही है। अगर अल्लाह ना चाहेगा तो भी रुक जाएगी, हम उस पर भी मुतमईन होंगे, तो मदद अल्लाह की मांगनी है। फिर इसी तरह निफाक बिल आखिर कुफर तक ले जाता है, यानी निफाक जो है ये कुफर तक ले जाता है। पता क्या चला कि निफाक के कीड़े को पहले ही निकाल दो ताकि कुफर तक ना पहुँचो। फिर इसी तरह जमजम से धुला कफन हो या नबी के कुर्ते में कोई दफन हो, अगर अमल खोटे होंगे तो इनका फ़ायदा नहीं है। किसकी मिसाल है? अब्दुल्ला बिन उबई की मिसाल है। तो असल बात है अमल। चलिए इस पारे का अहम नुक्ता क्या है, बतर दिखावा यानी रियाकारी है, ज़्यादा सामान जमा करने की बेलगाम ख्वाहिश, हैसियत से बढ़कर ज़िंदगी गुजारने का मरस, म्यारे ज़िंदगी को पूजना यानी आमदन से ज़्यादा खर्च करना, और आसाइश आराइश जायज़ बट नुमाइश जायज़ नहीं है। तो ये अहम नुक्ता है, इसको आप हाईलाइट करें। होमवर्क इस पारे के बाद क्या है कि मुख्तलिफ मामलात में बतर की मिसालें और इसके नुकसानात लिखें। ये देखिए बहुत अहम काम है, ये आपने ख़ुद करना होता है, इसके बग़ैर आपका काम नहीं चल सकता, क्योंकि होमवर्क जो होता है ये असल में आपने ख़ुद करना है, तो वरना आप लोग इसको नहीं कर पाएंगे। अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि आपकी मेरी ज़िंदगी से बतर की हर चीज़ को निकाल दे। तो ये था हमारा पिछला पारा, अब इंशाल्लाह हम पारा नंबर 11 को शुरू करेंगे इस सोच के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए इसमें बरकत भी दे, आसानियों के मामले फरमाए और अच्छे तरीके से हम इन चीज़ों को ले सकें। दीन और दुनिया कुरान ने पाक की रोशनी में, इस सिलसिले में आज हम पारा नंबर 11 जिसका नाम क्या है, या तज़ीरूना, वो उज़र करते हैं, इसको करेंगे। और आज ये पारा हमारा जिस थीम पे होगा, जिस मौजू पे होगा, उसको देखने से पहले हम पारा नंबर 10 के रीकैप पॉइंट स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ की रोशनी में देखेंगे। देखिए वालमु जान लो, इल्म की हैसियत क्या पता चला, क्या जान लो, अपनी स्किल्स को पहचान लो। बस लर्निंग को सीकिंग नॉलेज कहते हैं। सीकिंग नॉलेज वो होता है जो इस वक्त आप बैठकर एज अ स्टूडेंट कागज़ कलम लेकर कर रहे हैं, नो क्या जो उठते बैठते व्हाट्सएप मैसेजेस इधर से उधर आगे फॉरवर्ड सुनते देखते हैं। लर्निंग वह जो लिसनर्स बनकर किसी क्लास में बनते हैं। इल्म कब आता है, जब नॉलेज को सीख करने के लिए आप बैठिए, उसी में आपको अपनी स्किल्स का पता चलेगा, उसी में आप देखेंगे कि इस्लाम को कैसे सर्व करना है, और फिर आप ऑनर्ड फील करेंगे कि आप कुरान सीख रहे हैं। लोग किसी भी काम को सीखने के लिए जाएं तो मैं कुरान को सीखने के लिए क्यों ना जाऊं? फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्लाइड है बतर की। बतर क्या है? शो ऑफ है, ब्रांड कॉन्शियस होना है, एक्सेसिव डिज़ायर यानी और मिल जाए, हल में मज़ीद, अल्हाक मुतकासुर, ये असल में इसमें भी। फिर इसी तरह से लिविंग बियॉन्ड मीन्स, अपनी चादर से बाहर पाँव का फैलाना, ये बतर है। और पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या बन जाए, मनी मनी और मनी, या मनी स्पेंडिंग है या मनी अर्निंग है, दो सवाल जो क़्यामत के दिन खोले जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो आपने बहुत दफ़ा सुनी होगी कि ला तज़ूल क़दम इब्ने आदम मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसअलु अन्हु खमसा, वो 5 सवालों में आप देखिए 2 सवाल मनी से मुतल्लिक है, अन मालिन मिन ऐनक तसबहु व मिन ऐना अनफ़क़ु। तो ये मनी जो है दिमाग पे सवार हो जाए। आज माजरत के साथ हमारे मर्दों के दिमागों पे क्या सवार है, हमारे बेटों के दिमागों पे क्या सवार है, हमारे ख़ास तौर पे जो बिज़नेस में माइंडेड लोग हैं उनके दिमाग पे कि नमाज़ें क्यों जाती हैं, मस्जिद में जाके जमात से क्यों नहीं पढ़ते, हमारे दिल पे कितना रोब है, कमाने गया है, बेटा कमाने लग जाए मुझसे डरने लग जाते हैं, शौहर कमाता रहे चाहे कोई खूबी उसमें ना हो, कहते हैं पैसे तो दे रहे हैं ना। याद रखिए आज मनी मनी हमारे भी दिमागों पे। जब मर्द इतना कमाएंगे तो फिर औरतें भी लेकर 20-25 हज़ार पे लेकर जेब में डालेंगी ताकि चलो 2-3 जोड़े तो लेके आऊँ। आज पैसा हमारे भी दिमागों पे। इल्म होता ना तो हम इल्म के लिए कोशिश करते, इल्म के लिए तलब रखते। आज इल्म के लिए कुर्बानी को दे लोग कहते बेवकूफ़ है, पैसे के लिए लोग दूसरे मुल्कों में जाने को तैयार है। आज बच्चे पढ़ने दूसरे स्कूलों कॉलेजों में क्यों जाते हैं, और जो बहुत सारी बच्चियाँ बैठी इधर माशाल्लाह MSc और BSc के लेवल पे, आप पूछिए कि अमूमन हमारे स्कूलों कॉलेजों में जाकर पढ़ने का मकसद क्या है, कैरियर बिल्डिंग। और कैरियर क्यों है, ताकि अर्निंग हो जाएगी। हमने जॉब नहीं की कभी तो क्या हमें पैसे नहीं मिले? क्या आज भी वो घरेलू खातून जिसने कभी किसी जॉब का मुंह नहीं देखा उसके पास पैसे नहीं होते, उनके पास ज़्यादा होते हैं, ये भी लिख लें। यंग बच्चियाँ जो 20-25 हज़ार पे भी अगर कमा रही हैं ना, उनके जेब में फिर कोई पैसा नहीं है, और आंटियाँ मासियाँ खाला उन्होंने छुपा छुपा के गद्दों में कई लाखों जमा किया होता है। पैसे का ताल्लुक अर्निंग से नहीं है, तो लिहाजा इल्म भी सीखें तो इसलिए ना सीखें कि इससे पैसा कमाएंगे। फिर इसी तरह से ये देखिए, सर्व ऑल रिलीजन एंड अल्लाह विल हेल्प यू। सर्व ऑल, सब की मदद कीजिए, रिलीजन को ख़ास तौर पर। आप और मैं जब दीन की मददगार हो जाते हैं ना तो अल्लाह हमारा मददगार हो जाता है। जितना सर्व करेंगे उतना कनेक्ट रहेंगे, उतना ग्रो करेंगे। आप दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें अपने दीन के लिए चुन ले। फिर उसके बाद एक्शन पॉइंट्स थे पिछले पारे के। नंबर एक, वातीउल्लाह वातीउर्रसूल वला तनाज़ऊ फतफ़शलू फतस्ख़बरी हुकुम वस्बिरु इन्नल्लाह मा साबिरीन। ओबे अल्लाह, ओबे हिज मैसेंजर, डोंट आर्ग्यू, शो पेशेंस और हैव यूनिटी। ये काम है एक्शन पॉइंट। आप और मैं अपनी चेकलिस्ट खुद बनाते हैं कि आपके मेरा किस पे अमल है और किस पे अमल नहीं है। फिर उसके बाद देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़ा लकीतुम फ़ियतन फ़स्बुतू वस्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वालों, जब तुम किसी गिरोह से लड़ो तो साबित कदम रहो, अल्लाह का जिक्र करो कसरत से ताकि तुम फला पाओ। तो हर वक्त में करने के दो काम, इस्तक़ामत और अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद। फिर इसी तरह, वलाकिन्नल्लाहा सल्लमा इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस्सुदूर, सूरत अनफाल आयत 43 में सीखा था। लेकिन अल्लाह ने उनको सलामत रखा क्योंकि वो खूब सीनों की बातों को जानने वाला है। क्या पता चला? अल्लाह को पता है आपके मेरे लिए क्या बेहतर है, असल में शर में क्या खैर है, खैर में क्या शर है, बस उसके ऊपर ट्रस्ट करना है इंशाअल्लाह ताला। फिर इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखा, ज़ालिक बिअन्नल्लाह लम यकुम मुग़य्यिरन नेमतम अन अमहला कौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम वअन्नल्लाह समीउन अलीम। इसका उर्दू तर्जमा कर दूँ एक शेर में तो आप ख़ुद ही जान लेंगे, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको अपनी हालत के बदलने का। ब्लेसिंग्स रिमेन्स अनटिल अ पर्सन इज़ ग्रेटफुल। आपको अल्लाह ने कोई नेमत दी, बस ये इस वक्त दीन की नेमत, कुरान की नेमत, इस घर की नेमत, इस बच्चे की नेमत, ये आपके पास रहेगी कब तक? नंबर एक, आप शुक्र गुजार रहें उस नेमत के बारे में। दूसरी बात, यूज़ योर ब्लेसिंग इन द राइट वे, ठीक है। और तीसरी बात, वन शुड आस्क अल्लाह फॉर ब्लेसिंग, अल्लाह से मदद मांगते रहेंगे तो मदद आती रहेगी। और इसी तरह, हस्बुकल्लाह व मन तबाका मिनल मोमिनीन, आपको अल्लाह काफ़ी होगा और उनको भी जो मोमिनों में से आपकी मदद करते हैं। तो क्या पता चला? तवक्कुल असल में अल्लाह के ऊपर है। फिर इसी तरह, लव कैन नॉट बी अचीव थ्रू वेल्थ, पैसे से आप प्यार नहीं ले सकते। आप चलते हैं ना, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत कपड़ा अच्छा पहन लेंगे तो लोग आपसे प्यार करेंगे? नहीं, वो हसद करेंगे। प्यार कोई नहीं करता पैसों की वजह से, और भी तकाबुली करते हैं। दिलों को प्यार मिलता है, दिलों को मोहब्बत मिलती है अल्लाह की याद से। अल्लाह ताला कहते हैं, वल्लफ बैन क़ुलूबिहिम लौ अन्फ़क़्त मा फ़िल अर्दि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम। तो दिलों में उल्फत, शौहर के दिल में बीवी की, बीवी के दिल में शौहर की, और इसी तरह बच्चे बीवी सब की मोहब्बतें अल्लाह दिलों में डालता है, बंदा नहीं डाल सकता। फिर नेक्स्ट क्या है? ट्रस्ट अल्लाह नॉट द रिसोर्सेज, अपने इस्बाब पे तवक्कुल ना कीजिए, अल्लाह पे तवक्कुल कीजिए, वो आपकी मदद करेगा। और फिर यहाँ से जहाँ तबूक का सफ़र शुरू हुआ, हम सब के लिए एक थॉट प्रवोकिंग क्वेश्चन, सवाल उठाया जा रहा है, क्या कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू मालकुम इज़ा क़ील लकुम उन्फिरू फ़ी सबीलिल्लाहि साक़लतुम मिनल अर्ज़ और रदीतुम बिल हयात दुनिया मिनल आख़िरा फ़मा मताउल हयात दुनिया फ़िल आख़िरत इल्ला क़लील। ए ईमान वालो, तुम्हें क्या हो गया जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह के रास्ते में निकलो, तुम बोझल हो जाते हो ज़मीन की तरफ। क्या तुम राज़ी हो गए दुनिया की ज़िंदगी से आख़रत को छोड़कर? तो नहीं है फ़ायदा दुनिया का आख़रत के मुकाबले में मगर बहुत थोड़ा। यानी अक्सर हमारे घरों के काम हमें दीन के काम से रोक लेते हैं। ये हम सब के लिए सोच का एक नुक्ता है। फिर इसी तरह से असल इम्तिहान के रियल टेस्ट क्या है? स्टेइंग पेशेंट, सब्र से रहिए अनएक्सपेक्टेड और अनफेवरेबल सरकमस्टांसिस में। ये जो आवाज़ें ऊंची होती है ना, घरों में झगड़े ही रहते हैं, बच्चों से भी, बड़ों से भी, मासियों से भी, दूसरों से भी, उसकी बहुत बड़ी वजह क्या है कि हम तब्दीली को कबूल नहीं करते, इम्पेशेंट होते हैं, चीखने चिंगारने लगते हैं। तो बी स्टेडफास्ट, अपने आप को किसी भी चीज़ के साथ जमा लीजिए। फिर उसके बाद आगे देखिए, अवेल द अपॉर्चुनिटीज़, मौाक़े को इस्तेमाल कीजिए। और अल्लाह कहते हैं जिन्होंने मौका इस्तेमाल करना होता है ना, तो वो क्या करते हैं? वल उरादुल खुरूज अलअद्दुल हुद्दा, वो पहले से तैयारियां करके रहते हैं। ये नहीं कहते देखते हैं, सोचते हैं। मुझे तो एक सेकंड में अब टोन से पता चल जाता है कि ये बंदा जाएगा कि नहीं जाएगा इस नेकी में, ये काम इससे होगा कि नहीं होगा। जहाँ वो कहते हैं ना सोची पे आते बंदा गया, आप दूसरी सेकंड थॉट ले आएँ, आप यहाँ भी ना आते। अगर आप यहाँ आकर बैठे हैं तो उसकी वजह यह कि आपने इरादा किया था। तो अल्लाह टेक सवेदी तौफीक, अल्लाह तौफीक छीन लेता है व्हेन वन स्टे बैक फ्रॉम अ गुड डीड, जब एक बंदा अच्छे काम से पीछे होता है अपने शऊर से, मर्ज़ी से, अल्लाह फिर उसकी तौफीक छीनता है। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमसे तौफीक ना छीने। दुआ कीजिए, आज के पारे की दुआ सब मिलके पढ़ते हैं। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। क्या तर्जमा है इसका? मेरे लिए बस अल्लाह ही काफ़ी है, कोई माबूद नहीं मगर वो, उसी पर मैंने भरोसा किया और वो मालिक है अर्श अज़ीम का। आखिरी आयतें ये सूरत की, और इतनी प्यारी आयतें सुबह शाम 7 दफ़ा पढ़ी जाती हैं। तो इसको अपनी ज़िंदगी का शार बना लीजिए। आप महसूस करेंगे कि आपके वक्त में, आपकी सेहत में, आपकी हर चीज़ों में बरकत हो गई। तो ये थी बातें पारा नंबर 10 की। कुछ हज़म हुआ, कुछ एब्जॉर्प्शन हुई? आप देखिए ये जो बार बार के सेशन, छोटे बड़े, कभी रीकैप, कभी कुछ, ये ज़ाहिर बोझल लगते हैं। बहुत आसान है, 1 घंटे का पूरा मौजू लिया और चले जी आगे चलें। बहुत लोगों का दिल करता है फ़ौरन अगला पारा शुरू करें। नहीं, अगला पारा शुरू नहीं होगा जब तक पिछले पे अमल की नीयत नहीं होगी। आप अपने बारे में क्या कहते हैं? नीयत करते हैं, इरादा है, बतर निकालना है, अपने लिए पहनना है, अपने लिए जूता लेना है, अपने लिए खाना है, अपने लिए घर बनाना है। हर कंफर्ट लीजिए, कंफर्ट जोन में रखिए अपने आप को, लेकिन नीयत दूसरे नहीं। आप घर बनाए कहते हैं इसलिए जी के लोग देखें और जलें। क्यों, आप इतने बदबخت हैं कि आप दूसरों को जलाने के लिए पहनते हैं? मैंने जोड़ा पहना मेरा देख के जल के राख हो गई, अस्तग़फ़िरुल्लाह। आप किसी को जाए चूल्हा खोले उसका हाथ आगे रख दें तो आपने जलाया ना। क्या ये जलाना और ये कि मेरे कपड़े देख के जलो, मेरी ज्वेलरी देख के जलो, क्या फ़र्क है? अमल तो जलाने का है। तो फिर आज नियत करनी है कि हमने न जलना है न जलाना है, बल्कि सबको जहन्नुम का ईंधन बनने से बचाना है इंशाअल्लाह ताला।